चलिए आगे देखिए, रुकू 16, 71 से 76 आयत है। अल्लाह बरहक, जैसी मिसाल कोई नहीं। वल्लाहु फद्दल बादकुम अला बाद, अल्लाह ही ने तुम में से एक को दूसरे पर रोज़ी में ज्यादती दे रखी है, बस जिन्हें ज्यादती दी गई है वो अपनी रोज़ी अपने मातहत गुलामों को नहीं देते कि वो और ये इसमें बराबर हो जाएं। तो क्या ये लोग अल्लाह की नेमतों के मुनकिर हो रहे हैं? लफ्ज़ नेमत को गिनिएगा। अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम ही में से तुम्हारी बीवियां पैदा की, और तुम्हारी बीवियों से तुम्हारे लिए बेटे और पोते पैदा किए, और तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को दी। क्या फिर भी लोग बातिल पर ईमान लाएंगे और अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री करेंगे? और वो अल्लाह ताला के सिवा इनकी इबादत करते हैं, जो आसमानों और ज़मीन में से इन्हें कुछ भी तो रोज़ी नहीं दे सकते और ना कुदरत रखते हैं। बस अल्लाह ताला के लिए मिसालें मत बनाओ। अल्लाह ताला खूब जानता है और तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला एक मिसाल बयान करता है कि एक गुलाम है और दूसरे की मलकियत का, जो किसी बात का इख्तियार नहीं रखता, और एक और शख्स है जिसे हमने अपने पास से माकूल रोज़ी दे रखी है, जिसमें से वो खुले छुपे खर्च करता है। क्या ये सब बराबर हो सकते हैं? अल्लाह ताला ही के लिए सब तारीफ है, बल्कि इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। नौकरों के साथ ताल्लुक इस आयत से समझ आ रहा है, मुलाजिमों से, मातहतों से, डिपेंडेंट से। अल्लाह ताला एक और मिसाल बयान फरमाता है दो शख्सों की, जिनमें से एक तो गूंगा है और किसी चीज़ पर इख्तियार नहीं रखता, बल्कि वो अपने मालिक पर बोझ है। कहीं भी से भेज दो, कोई भलाई नहीं लाता, यानी इतना बुद्धू सा मुलाजिम है। क्या ये और वो जो अदल का हुक्म देता है और है भी सीधी राह पर बराबर हो सकते हैं? क्या खूबसूरत मिसालें समझ आई हैं तौहीद और शिर्क। हम तो नहीं चाहते कि हमारे माल में हमारे मुलाजिम बराबर के शरीक हो जाएं। देखिए, हम उनको अच्छी तरह रखेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, कपड़े भी लेके देंगे, सब करेंगे, लेकिन क्या हम अपना बैंक अकाउंट उनके साथ शेयर करेंगे? आधी दौलत उनको दे देंगे, अपना आधा जेवर निकाल कर दे देंगे? तो फिर अल्लाह के लिए क्यों कहते हो कि अल्लाह ने फलां को अपना हिस्सादार बना दिया और उसको बना दिया? तो यहाँ असल में उस शिर्क की तरफ भी इशारा है जो उस दौर में ख़ास तौर पर मक्का के लोगों में आम था। आपके मेरे लिए अमल के नुक्ते क्या हैं? अपने माल से गरीबों की मदद करना, बातिल और हक में फ़र्क जानना, अल्लाह के सिवा दूसरों पर तवक्कुल नहीं करना, अल्लाह ताला की दी हुई मिसालों से नसीहत लेनी है, एलानिया और पोशीदा खर्च करना है, और सीधे रास्ते पे रहना है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। रुकू नंबर 17, 17, 77 से 83। टॉपिक है अपना हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करो। बहुत अहम पैगाम है, क्योंकि लोग आपको मुझे कुछ नहीं देंगे, दे भी नहीं सकते, क्योंकि किसी के पास कुछ है भी नहीं। कैसे? वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द, आसमान और ज़मीन का गैब सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है, और क़्यामत का अमर तो ऐसा है जैसे आँख का झपकना, बल्कि इससे भी ज़्यादा करीब। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारी माओ के पेटों से निकाला है कि इस वक्त तुम कुछ भी नहीं जानते थे, इसी ने तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए कि तुम शुक्रगुजारी करो। क्या इन लोगों ने परिंदों को नहीं देखा जो ताबे फरमा होकर फिजा में हैं, जिन्हें सिवाय अल्लाह के कोई और थामे हुए नहीं? बेशक इसमें ईमान लाने वाले लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए घरों में सकूनत की जगह बना दी। बोले अल्हम्दुलिल्लाह, घर कितनी बड़ी नेमत है। और इसी ने तुम्हारे लिए चौपायों की खालों के घर बना दिए, जिन्हें तुम हल्का फुल्का पाते हो। ये कौन से हैं? टेंट्स, खेमे, अपने कूच के दिन और अपने ठहरने के दिन भी। और इनकी ऊन और रूमों और बालों से भी इसने बहुत से सामान और एक वक्त मुकर्रर तक के लिए फ़ायदे की चीज़ें बनाई। अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए अपनी पैदा करदा चीज़ों में से साए बनाए हैं, और इसी ने तुम्हारे लिए पहाड़ों में गार बनाए हैं, और इसी ने तुम्हारे लिए कुर्ते बनाए हैं जो तुम्हें गर्मी से बचाएं, और ऐसे कुर्ते भी जो तुम्हें लड़ाई के वक्त काम आए। वो इसी तरह अपनी पूरी पूरी नेमतें दे रहा है कि तुम हुक्म बरदार बन जाओ। किसी ने वैसे काउंट किया लफ्ज़ नेमत कितनी दफ़ा इस सूरत में आया? अल्लाह अकबर कबीरा। फिर भी अगर ये मुंह मोड़े रहें तो आप पर सिर खोल कर तबलीग कर देना है, ये अल्लाह की नेमतें जानते पहचानते हुए भी इनके मुनकिर हो रहे हैं, बल्कि इनमें से अक्सर तो नाशुक्रे हैं। क्या पता चला कि नेमतें पाकर अगर अल्लाह के शुक्रगुजार बन जाओ तो ये नेमतें रहमत हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि चार किस्म के लोग हैं, लिख लें जल्दी से चूंकि नेमतों वाली सूरत पढ़ रहे हैं। नंबर एक, दुनिया में बहुत नेमतों में, आखिरत में बहुत बड़ी पकड़ में होंगे। दूसरे, इसके ऑपोजिट, दुनिया में आजमाइशें आजमाइशें आजमाइशें, आखिरत में बहुत खैर होगी। तीसरे, वो जिनको दुनिया बहुत अच्छी मिली है और इंशाल्लाह आखिरत भी बहुत प्यारी होगी। और नंबर चार, जिनकी दुनिया भी ख़राब, जहालत भी है, गुर्बत भी है, बीमारियां भी हैं, तो शिर्क बिदत भी है और आखिरत भी बुरी होगी। आप में किस में अपने आप को शामिल करवाएं? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अमल के नुक्ते, यकीन रखना है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, असल खालिक अल्लाह है, हम पर सिर्फ उसी का इख्तियार है। परिंदों की तरह ताबे फरमान बनना है, शुक्र अदा करना है, घर कपड़ा अल्लाह मुहैया करता है, इसी के इलाह होने का इकरार करना है और अल्लाह की नेमतों में घिरे हैं इसलिए उसकी नाशुक्री नहीं करनी। दुआ करिए अपनी नेमतों को अल्लाह के रस्तों में लगाना है, ना कि उसकी नाफरमानियों में। आगे रुको नंबर 18, 84 से 89। हर नबी अपनी उम्मत पर गवाही देगा, व यौम नबअसु मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदा, और जिस दिन हम हर उम्मत में से गवाह खड़ा करेंगे, फिर कुफार को ना इजाज़त दी जाएगी और ना इनसे तौबा करने को कहा जाएगा, और जब ये जालिम अजाब देख लेंगे, फिर ना तो इनसे हल्का किया जाएगा और ना वो ढील दिए जाएंगे, और जब मुशरिकीन अपने शरीकों को देख लेंगे तो कहेंगे कि हमारे परवरदिगार, यही वो हमारे शरीक हैं जिन्हें हम तुझे छोड़कर पुकारा करते थे। बस वो इन्हें जवाब देंगे कि तुम तो बिल्कुल ही झूठे हो। उस दिन वो सब आजिज़ होकर अल्लाह के सामने इताअत का इकरार पेश करेंगे, और जो बुख्तानबाजी किया करते थे वो सब इनसे गुम हो जाएंगी। जिन्होंने कुफर किया और अल्लाह की राह से रोका, हम इन्हें अजाब पर अजाब बढ़ाते जाएंगे। ये बदला होगा इनके फितना फैलाने का। और जिस दिन हम हर उम्मत में इन्हीं में से इनके मुकाबले पर गवाह खड़ा करेंगे और आपको इन सब पर गवाह बना कर लाएंगे, तो आप पर यह किताब नाजिल फरमाई है जिसमें हर चीज़ का शाफी बयान है और हिदायत और रहमत और खुशखबरी है मुसलमानों के लिए। अल्लाह के नबी इसी गवाही के एहसास से रोते थे, जिसका यहाँ तीसरी दफ़ा तذکرہ आया, आप देख रहे हैं। तो क्या पता चला हमने क्या करना है? इस दिन से डरना है जिस दिन तौबा कबूल ना होगी, तो क्या करें? आज ही पक्की सच्ची तौबा करनी है, तौबा और इस्तग़फ़ार करनी है। इस बात पर यकीन रखना है कि अल्लाह जुल्म की सज़ा देगा, और ऐसा कोई अमल नहीं करना जिसकी क़यामत में सुबकी हो। बहुतान लगाने से बचना है और दूसरों को अल्लाह की राह से चलने से नहीं रोकना। आगे बहुत ही खूबसूरत आयत है, 90 से 100 में, रुकू 19 है। अल्लाह ताला से अहदो पैमा को पूरा करो, टॉपिक है इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। अल्लाह ताला अदल का, भलाई का और कराबदारों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है, और बेहयाई के कामों, नाशायस्ता हरकतों और जुल्म और ज्यादती से रोकता है। वो खुद तुम्हें नसीहत कर रहा है कि तुम नसीहत हासिल करो, और अल्लाह ताला के अहद को पूरा करो जबकि तुम आपस में कौलो इकरार करो, और कस्मों को इनकी पुख्तगी के बाद मत तोड़ो, हालांकि तुम अल्लाह ताला को अपना जामिन ठहरा चुके हो। तुम जो कुछ करते हो अल्लाह इसको बखूबी जानता है, और इस औरत की तरह मत हो जाओ जिसने अपना सूत मजबूत कातने के बाद टुकड़े टुकड़े करके तोड़ डाला, कि तुम अपनी कस्मों को आपस के मकर का बायस ठहराओ, इसलिए कि एक गिरोह दूसरे गिरोह से बड़ा चढ़ा हो जाए। बात सिर्फ यही है कि सेहत से अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है। यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे लिए क़यामत के दिन हर उस चीज़ को खोल कर बयान कर देगा जिसमें तुम इख्तलाफ कर रहे थे। अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही गिरोह बना देता, लेकिन वो जिसे चाहे गुमराह करता है और जिसे चाहे हिदायत देता है। यकीनन तुम जो कुछ कर रहे हो इसके बारे में बास बुरस की जाने वाली है, यू विल बी आंसरेबल। और तुम अपनी कस्मों को आपस की दगाबाजी का बहाना ना बनाओ, फिर तो तुम्हारे कदम अपनी मजबूती के बाद डगमगा जाएंगे और तुम्हें सख्त सजा बर्दाश्त करना पड़ेगी, क्योंकि तुमने अल्लाह की राह से रोक दिया और तुम्हें बड़ा सख्त अजाब होगा। तुम अल्लाह के अहद को थोड़े मोल के बदले ना बेच दिया करो। याद रखो कि अल्लाह के पास की चीज़ ही तुम्हारे लिए बेहतर है, बशर्ते कि तुम में इल्म हो। और खूबसूरत सी बात, मा इंदकुम यनफत, तुम्हारे पास जो कुछ है सब फानी है और अल्लाह के पास जो कुछ है वो बाकी है। और सब्र करने वालों को हम भले आमाल का बदला बेहतरीन सूरत में ज़रूर अता करेंगे। इंसान के हाथ में बड़ी बेबरकती है, जो उसके हाथ में चीज़ आती है ना वो ख़त्म हो जाती है, अल्लाह के हाथ में जो चीज़ आती है ना वो बाकी रह जाती है। अच्छा, हम इससे ऑपोजिट सोचते हैं, हम कहते हैं जो मेरे पास है ना वो है भाई, कभी मुश्किल में काम आएगा। अल्लाह कहता है अल बाकी के हाथ में दे दो, उसको भी बका मिल जाएगी। आप अपनी जो सलाहियत अल्लाह के रास्ते में लगाते जाते हैं ना, माल दौलत के साथ साथ, चीज़ों के साथ साथ, वो बिल्कुल प्रिजर्व होती जाती है। और अल्लाह फिर जब उसको पलटा कर देगा तो इंसान को यकीन नहीं आएगा ये मेरा ही रिवॉर्ड है। हमारी एक टीचर थी ना, तो एक मिसाल देती थी कि एक गरीब सा बंदा है, उसके पास चंद गज़ कपड़ा था। वो कहता है अच्छा चलो इसमें से आधा सदका कर दो, वो सदका कर देता है। क़यामत के दिन उसके पास कई थान कपड़े के लाए जाएंगे और वो कहेगा अल्लाह ताला मैंने तो ज़िंदगी में कभी इतने थान देखे ही नहीं थे इकट्ठे, ये मेरा नहीं है अजर, मेरे पास तो चंद गज़ था का, वो तेरे उस चंद गज़ के कपड़ों को हमने कई थानों में बदल दिया। ये है अल्लाह के पास, माइन तकुम यनफत। आज आप ज़रा से इस आयत को सामने रख कर ना अपनी ज़िंदगी पर गौर कीजिएगा। पहले तो माँ इंदकुम की लिस्ट बनाएं, बना सकते हैं? मैं तो नहीं बना सकती। हमारे पास क्या कुछ है? कभी भी रमज़ान के बाद ही सही चले फारिग होंगे ना, थोड़ा सा टाइम लगाइए, लिस्टें बनाएं अपनी, इन्वेंट्री करें। बिजनेसमैन बनाते हैं ना, एक एक चीज़ लिखी जाती है जो कुछ कारोबार में आती है और जाती है। आप अपनी इन्वेंट्री बनाएं, कपड़ों की इन्वेंट्री, जूतों की, पर्सों की, घर के सामान की, चीखें निकल जाएंगी। माँ इंदकुम यनफत, गुना नहीं है, मना नहीं है, हिसाब है। देखिए हिसाब और चीज़ है, अजाब और चीज़ है। आप इसको बस वही मिसाल से समझे कि आप अपने साथ चार लगेज लेकर एयरपोर्ट पहुँचे और एक दूसरा हाथ में एक ब्रीफकेस लेकर पहुँचा, फ़र्क सबको पता है ना, ये फ़र्क है। आप अभी तुलवा रहे हैं और निकलवा रहे हैं और अभी कम हो रहे हैं और ज़्यादा हो रहा है और अगला लेके जाके वो VIP लाउंज में बैठा चाय और सैंडविच खा रहा है। ऐसे लोग जिनको दुनिया में नेमतें कम मिली हैं ना, वो 500 साल पहले जन्नत में पहुंच जाएंगे उन लोगों से जिनको नेमतें तो मिली और अभी वो उसका हिसाब किताब चुका रहे हैं। ये बातें थी जिसके वजह से सहाबा क्या कहते थे, इधर नहीं उधर। अबू ज़र को याद कर लीजिए, आगे बहुत ही प्यारी आयत है जिसमें हम सब खवातीन का जिक्र है। जो शख्स नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, लेकिन बा ईमान हो, तो हम उसे यकीनन नहायत बेहतर ज़िंदगी अता फरमाएंगे और इनके नेक अमाल का बेहतर बदला भी इन्हें ज़रूर ज़रूर देंगे। यह है जी फेवरेट आयत में से, वन ऑफ फेवरेट, फलनुहयीअन्नहू हयातन तय्यिबा। पीछे मैंने आपको इसकी तरफ इशारा किया था कि तय्यब पे आगे बात होगी। आपकी मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप जब अपने आप को फोकस करके अल्लाह की किताब और अल्लाह के बंदों और अल्लाह के दीन के लिए ले आते हैं ना, एक एक करके बेकारियात आपकी ज़िंदगी से निकल जाती हैं। सिर्फ तारीफें कर करके चाय पीने वाले दोस्त ही निकल जाते हैं और आपका वक्त ज़ाया करने वाले जो आप चलो आओ ना इधर चले आओ विंडो वॉचिंग आओ देखें ये करें वो सब निकल जाते हैं। लोगों को पता चल जाता है आप एक बामकसद इंसान हैं। लोग तो आपसे बात करने से पहले 4 मिनट ये बात करते हैं आपका टाइम बड़ा कीमती है ज़्यादा नहीं लूँगी, बड़ा कीमती है ज़्यादा नहीं लूँगी, भाई बात कीजिए, नहीं आपसे बात करनी थी, आपको फ़ोन करना था, नहीं आप सो रहे होंगे जाग रहे होंगे, ये है हयातन तय्यिबा। सब बेकारियात ख़त्म। अब देखिए शहद की मक्खी बन जाए तो आपके पास वो दूसरी मक्खी नहीं आके बैठेगी, दूसरी मक्खी कहाँ बैठ, उधर बैठ उधर बैठ, दिल नहीं लग रहा था बातें कर लो कुछ, आओ चलो ना बाजार चलते हैं, आओ चाय पीते हैं, आओ उधर चलते हैं, बेकार होते हैं ये लोग। और ये चीज़ें एंड पे आपको क्या करती हैं, डिप्रेस। टाइम ही नहीं है बोर होने का, टाइम ही नहीं है डिप्रेस होने का, टाइम ही नहीं है किसी परेशानी में लगने का, जो होता है वो होने दीजिए। वो किसी ने कहा ना लड़ने को दिल बहुत कर रहा है पर टाइम नहीं है, जवाब देने को मेरा भी बड़ा दिल करता है पर वक्त नहीं है। ऐसी एक स्टूडेंट थी किसी क्लास में, तो उस दिन क्लास में कुछ ऐसी ही बातें हुई, फॉरगिव फॉरगेट। तो कहने लगी कि आज सुबह जब मैं अपने घर से आ रही थी तो मेरी मियाँ से बड़ी सख्त लड़ाई हुई, तो मैं उनको आखिरी जुमले जो बोल के आई वो ये थी कि आज रात को खुल के बात करेंगे, और उसी दिन क्लास में बात हो गई फॉरगिव फॉरगेट। कहने लगी मेरा दिल वहीं साफ हो गया, मैंने वहाँ बैठे बैठे मियाँ जी को सॉरी कर लिया, आई एम सॉरी। क्यों इतने लंबे तूल देते हैं मसलों को, इतना वक्त ही नहीं है आपके मेरे पास, वहाँ बैठ के जन्नत में जाकर सारे तस्वीर कर लीजिएगा। तो मोमिन का हाल क्या होना चाहिए, वक्त कम मुकाबला सख्त, और अल्लाह ताला आपको मुझे हकीकत में कारामत बना ले। अब तो जुत जाए, देखिए इस पे अक्सर वो एक मिसाल दी जाती है ना कि एक बंदा जब दुनिया से जाता है ना, एवरेज इंसान, तो कुछ साइंसदानों के मुताबिक, हो सकता है गलत भी हो, पूरा फिगर ठीक भी ना हो, लेकिन नियर अबाउट तो होगा, वो कहते हैं सिर्फ अपने ब्रेन का 5% यूज़ करके जाता है, 95% कब्र में जाता है। तो इस पे एक नज़रिया जो हमारे साथ एडवांस क्लासेस में, उनको तो पता ही है, डाई एम्प्टी लिखिए, आज चले इस पारे के साथ यही काम कर जाए, डाई एम्प्टी। मैंने मरने से पहले पहले अपने आप को पूरा यूज़ करना है, खाली होके मरना है। जब जाना है इधर से तो अपना दिल दिमाग आंखें माल दौलत कपड़े घर जूते परस एक एक चीज़ सब दे के खाली आ जाना है, कि अल्लाह तेरा बंदा खाली गया था तो खाली आ गया। और ये मज़ा कब आता है, जब आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद होता है। इसलिए आगे देखिए आयत 98, कुरान पढ़ने के वक्त रांधे हुए शैतान से अल्लाह की पनाह तलब करो, क्या अमल है इस पे, आउज़ु बिल्लाही मिनश्शैतानिर्रजीम, ये आयत है जिस पे हम ये पढ़ते हैं। ईमान वालों और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखने वालों पर इसका जोर बिल्कुल नहीं चलता, हाँ इसका गलबा इन पर तो यकीनन है जो इसी से रिफाकत करें, दोस्तियां करें और इसे अल्लाह का शरीक ठहराएं। आप देखिए कि हम बड़ा खूबसूरत पॉइंट अब सूरत नाहल का इस वक्त पढ़ रहे हैं, आयत 97 जिसमें औरतों और मर्दों की बात हुई। अल्लाह के नबी के दौर की सहाबियात जो थी वो इतनी बाशऊर थी कि अल्लाह के नबी के पास आ गई। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु का अमल आपको हदीस से मिलता है, कहने लगी कि अल्लाह के नबी, मर्दों के पास नेकियों के इतने मौके, हम औरतों के पास नहीं, दुनियावी और उखरवी तमाम तर साते जो हैं वो तो मर्द ले गए, औरतों के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो आपने क्या फरमाया, नहीं ऐसा नहीं है, अल्लाह ने दोनों के लिए सआदत का दरवाज़ा खोला हुआ है, औरत की नज़रें घर से बाहर नहीं, घर के अंदर कौम की तकदीर तैयार करने पर अगर मामूर हो जाएं तो औरत मर्दों से ज़्यादा आसानी से जन्नत में जा सकती है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। ऐसी ही एक औरत से आज आपकी मुलाकात कराऊंगी, हज़रत खनसा रदी अल्लाहु अन्हा। यही वो माएँ थी कि जिनकी गोदों में इस्लाम पलता था, अपने दौर की अजीम शायरा थी और मुसलमान माशरे के लिए मिसाली माँ थी। अल्लाह ताला ने इन्हें चार बेटे दिए। जब जंगे कादसिया में हक और बातिल का मार्का बरपा हुआ तो आपने अपने चारों बेटों को बुलाकर फरमाया कि बेटो, मैंने आज ही के दिन के लिए तुम्हें पाला था। नोट करते, आज की माँ क्या कहती है, तेरे सर पे सेहरा बांधने के लिए तुझे पाला था। तुम अपने हसब नसब में नहायत पाकीज़ा हो, यानी कोई शक नहीं है, क्योंकि उस दौर में ऐसे पाक नहीं थे, इतना जिना था कि बच्चों का असल बाप कौन है ये पता ही नहीं होता था। तो तेरे बेटों को कह रही हैं कि तुम बिल्कुल पाक नसब हो, मेरी आरजू है कि तुम अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए एक एक करके इस तरह जान दो कि तुम हर लगने वाला जख्म अपने सीने पर खाओ, ताकि कयामत के दिन मैं तुम पर फख्र कर सकूं। ये माएँ थी, आज ऐसी माँ होती ना तो उसको बारने आगे वाले ले जा चुके होते नॉर्वे में होते। तो हमने अपने बच्चों को कितना बुजदिल बना दिया, इतने लो स्टैंडर्ड का बना दिया। खैर आगे सुनिए, चुनाचे ये चारों बेटे मैदाने कादसिया में जिहाद में शरीक हुए और एक एक करके मर्दाना वार इस्लाम की इज्जत और हुर्मत पर निसार हो गए। आज का बेटा किसी बच्ची के हुस्न पे निसार हो जाता है, कुर्बान होता है किसी की निगाह पे, किसी के इशारे अब्रू पे। और जब इनमें से एक भाई जख्म खाकर गिरने लगता तो दूसरे भाई को आवाज देकर कहता कि अम्मा से कहना मैंने अपने सीने पर जख्म खाकर जान दी थी। कासिद जब इनकी शहादत की खबर लेकर इनके घर पहुंचा, माँ को इत्तला हुई, फरमाया कासिद को जरा रोको। चुनाचे दो नफिल नमाज पढ़ी, फिर कासिद से मिली। इसने बताया कि आपके बेटों ने मर्दाना वार सीने पे जख्म खाकर मौत का सामना किया, आपको मुबारक हो। फरमाने लगी जब तुम पहुंचे थे मैं समझ गई थी कि तुम मेरे बच्चों की शहादत की खबर लाए हो, लेकिन मैंने मन्नत मानी थी कि बच्चों की शहादत की खबर सुनकर मैं अल्लाह के हजूर दो रकत नमाज शुक्राना पढ़ूंगी, इसलिए मैंने पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर तुमसे खबर वसूल की। ये थी रदी अल्लाह अन्हुं वर्दू अन वालियाँ और वाले। आप और मैं क्या करें, कुछ बातें सीखिए। खूबसूरत आयत है ना 90, तीन बातों के करने का हुक्म, तीन से रुकने का। मसलन अदल करना है, एहसान करना है, रिश्तेदारों के हकूक अदा करने हैं, कस्मों को नहीं तोड़ना, बेहतरीन नज़र पाने के लिए सब्र करना है, शैतान से पनाह मांगनी है, फुखश से रुकना है और मुनकर से अपने आप को दूर करना है। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दे। आगे जी रुकू नंबर 20, 101 से 110। कुरान पाकीज़ा बारिश की तरह। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे दिल भीगे होते हैं इस महफिल में? ये कुरान की बारिश सिर्फ यही दिलों को हरा करेगी। और आप जड़ों में पानी डाल दें, पत्तों तक अल्लाह खुद पहुँचाएगा। ये कुरान की जो शम्मा आपकी ज़िंदगियों में जली है ना, और जो स्पेशली फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इस पानी को अपने बच्चों के साथ और घर वालों के साथ शेयर करें। आगे जी रुकू नंबर 20, देखते हैं कैसे। वैस बदल न आयत हम मकान न आया। और जब हम किसी आयत की जगह दूसरी आयत बदल देते हैं और जो कुछ अल्लाह ताला नाजिल फरमाता है इसे वो खूब जानता है, तो ये कहते हैं कि तू तो बुख्तान बाज है। बात यह कि इनमें से अक्सर जानते ही नहीं। कह दीजिए कि इसे आपके रब की तरफ से जिब्राइल हक के साथ लेकर आए हैं ताकि ईमान वालों को अल्लाह ताला इस्तकामत अता फरमाए और मुसलमानों की रहनुमाई और बशारत हो जाए। हमें बखूबी इल्म है कि ये काफिर कहते हैं कि इसे तो एक आदमी सिखाता है, यानी नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह के नबी अल्लाह से नहीं लेते, किसी बंदे से सीखते हैं। इसकी ज़ुबान जिसकी तरफ ये निस्बत कर रहे हैं आजमी है, और ये कुरान तो साफ अरबी ज़ुबान में है। और जो लोग अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते इन्हें अल्लाह की तरफ से भी रहनुमाई नहीं होती और इनके लिए अलमनाक अज़ाब है। झूठ इफ्तरा तो वही बांधते हैं जिन्हें अल्लाह ताला की आयतों पर ईमान नहीं होता, यही लोग झूठे हैं। जो शख्स अपने ईमान के बाद अल्लाह से कुफर करे सिवाय इसके कि जिन पर जबर किया जाए और इसका दिल ईमान पर बरकरार हो, मगर जो लोग खुले दिल से कुफर करें तो इन पर अल्लाह का गज़ब है और इन्हीं के लिए बहुत बड़ा अजाब है। ये इसलिए कि इन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को आखरत से ज़्यादा महबूब रखा, हालांकि अल्लाह काफिर लोगों को राह रास्त नहीं दिखाता। ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर और जिनके कानों और जिनकी आँखों पर अल्लाह ताला ने मुहर लगा दी है, और यही लोग गाफिल हैं। कुछ शक नहीं कि यही लोग आखरत में सख्त नुकसान उठाने वाले हैं। जिन लोगों ने फितनों में डाले जाने के बाद हिजरत की, फिर जिहाद किया और सब्र का सबूत दिया, बेशक तेरा परवरदिगार इन बातों के बाद इन्हें बख्शने वाला और मेहरबानियां करने वाला है। ये हैं जी वो आयात जिस पे थोड़ी सी सहाबा कराम से मुतालिक बात करनी है। आयत 106, मन उक्रिह वक़ल्बहु मुतमइन्नुन बिल ईमान। तो इस पे हमारे इस पारे की शख्सियत अम्मार बिन यासिर। हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं कि यह आयत उनके बारे में नाजिल हुई। कौन थे, क्या इनके साथ मामला हुआ, बस इसका खुलासा दे देती हूँ कि माँ भी सहाबिया सुमैया और पहली शहीदा इस्लाम की, और बाप भी कौन, यासिर, और इनका नाम अम्मार है। मक्का में इनके ऊपर बहुत जुल्म सितम टूटे और ये बिल्कुल छोटी उम्र में ही थे उस वक़्त जब अबू जाहल इनके पूरे घराने को पत्थरों पे और रेत पे लिटा देता था, और वहाँ ये फिर उस तकलीफ़ से गुजारे जाते थे जिसका तذکرہ ہے. आप देखिए कि जिसने जितनी भी कुर्बानी दी है ना इस रास्ते में, अल्लाह ताला ने उसको उतना ही फैज़ भी दिया है. तो उमर बिन जासिर के हालात पढ़ने से पहले अगर हम अपने ऊपर लेकर सोचें, क्या हम मजबूरियों के नाम पे मुतमईन होकर बैठकर गुनाह करते हैं या हम खुश होते हैं? ये वो लोग थे कि जिनको अल्लाह ताला ने अपने इन रस्तों में चुना. तो उमर बिन जासिर की ज़िंदगी ऐसी थी कि एक मौके पे उनको कुफार ने पकड़ लिया और कहा, जब तक मोहम्मद सल्लम के ख़िलाफ़ नहीं बात करोगे हम तुम्हें नहीं जाने देंगे. बिल आखिर फिर इनको नबी के बारे में कुछ कहना पड़ा. वहाँ से निकले, सीधे अल्लाह के नबी के पास आए. अल्लाह के नबी, ये करके आया हूँ. तो ये आयत उतरी थी, ये बताओ कि दिल कैसा है. अल्लाह के नबी, दिल आपके ये साथ मोहब्बत में चूर है, इस्लाम पे प्यार है, का फिर तुम्हारे लिए खैर है. तो क्या पता चला कि ये लोग तकलीफ़ें सह के. इसी तरह आप देखिए कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, मुशरिकों के सख्त मजालिम पर इनकी बात नहीं मानी. नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ़ में आहद आहद पुकारते रहे, चिलचिलाती धूप में लिटाकर भारी पत्थर आपके सीने पर रखा जाता, एक लफ्ज़ शिर्क अदा नहीं किया. माफ़ कीजिएगा, आज कई गाने शिरकियाँ हैं, कई नशीद शिरकियाँ हैं, कई जुमले जवानी के नशे में शिरक से भरे हुए निकल जाते हैं मुँह से, और हमारे बच्चों को इसका पता ही नहीं है. तो ख़ुद से पूछिए, आगे बढ़िए, क्या हम अपनी नस्लों को इस तरह का ईमान दे चुके हैं? क्या हज़रत बिलाल जैसा ईमान मेरे बेटे का है? और कल अल्लाह ना करे मुसलमानों पे कोई इज्तमाही आफत आ जाए और डंके की चोट पे उनको गैर मुस्लिम बनाया जाए. और बनाया गया, बर्मा में क्या हुआ था, आज भी हो रहा है. ऐसी बातों को मीडिया कवरेज नहीं देता. और कुछ नहीं है ना, तो ये ब्रेन स्ट्रॉमिंग की जा रही है हमारी नस्लों की, बच्चों के दिलों में कूट कूट के अल्लाह, रसूल और आखरत, इसका अकीदा दुरुस्त करवाती थी. भर दीजिए अल्लाह रसूल की मोहब्बत. इस तरह हुबैब बिन जैद थे, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने एक सवाल किया था कि अल्लाह के नबी के रसूल होने की गवाही देने की बजाय मेरी दो. इन्हें का नहीं दूंगा. मुसैलमा कज़्ज़ाब इनका एक एक उज़्व काटता गया, अब देते हो, अब देते हो, अब देते हो, नहीं देते, और ये हक की गवाही से नहीं पलटे. इसी तरह अब्दुल्ला बिन खजाफा साहमी, रूमी कुफार ने इनको एक जंग में कैद कर लिया. बादशाह ने कहा, या रोमन बन जाओ या कत्ल कर दिए जाओगे. कहने लगे, नामुमकिन है कि मैं अल्लाह के दीन को छोड़ूं. और फिर शहीद हो गए. ये है हिजरतों के बाद कुर्बानियों का सफ़र. आपके मेरे लिए तो बस इतना ही है कि कुरान को हिदायत और बशारत की किताब मान लें, अल्लाह की आयतों पर ईमान लाएं, झूठ से नफरत सीखें, ईमान लाने के बाद कुफर नहीं करना, आखरत को दुनिया के मुकाबले में महबूब रखना है, और फितनों से बचने के लिए हिजरत करनी है, और ख़ास तौर पे वेस्ट में बैठे हुए माँ बाप. 1% भी आपको शक पड़ रहा है ना कि आपका बच्चा बिदक रहा है, फौरन निकल जाए, कल नहीं जाएगा ये आपके साथ. ये आप लोगों को तो मसले नहीं पता, इसलिए इस दफ़ा मैंने इतने छेड़े ही नहीं हैं. जिस साल जिस मुल्क में दौरे कुरान होता है ना, बस वही जेल पे रहता है ज़्यादा. लेकिन मामला इतना गंभीर है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते. क्या करना उन डॉलर्स का, कागज़ के हैं, कोई सोने के थोड़ी हैं, कोई खा नहीं सकता डॉलर्स. क्या करना उन पाउंड्स और यूरोस का, और क्या करना उसका कि जिसके बाद हमारे बच्चों की सोच ही मारी गई. वो इस्लाम से आज खुद ही कह रहे हैं, वी आर एक्स मुस्लिम, पूरी वेबसाइटें बनी हुई है एक्स मुस्लिम्स, चैनल बने हुए यूट्यूब्स के रन बाय मुस्लिम्स, व्हाई वी लेफ्ट इस्लाम, आओ बताएं. और फुल उनको कवरेज हासिल है और पूरी सहूलत हासिल है. एक ऐसी बच्ची की कहानी, इबरतनाक कहानी थी, कि जिसकी माँ ने कहा कि मेरी ये बात जहाँ जहाँ पहुँचा सके पहुँचा दें. पहले स्कूल टीचर्स के ज़रिए बच्ची का ब्रेन ख़राब किया, उसको एंटी इस्लाम किया, फिर उस बच्ची को टीचर ने कहा कि तुम इस्लाम के ख़िलाफ़ लिखो. मैंने भी पढ़ा, आम सा इंग्लिश में एक लेटर लिखा, इस्लाम ऐसा, ये वो बुरा, बाहर के नाम, मैं नाम नहीं लेती उन मुल्कों के, वहाँ से उसको $1,000 गिफ्ट में इनाम मिला इतना अच्छा मज़मून लिखने पर. फिर उस टीचर ने जो खुद लेस्बियन थी, उसको माँ बाप के ख़िलाफ़ किया। माँ बाप से कहा कि ये बच्ची को मैं समझाऊंगी, मेरे पास ले आए, मैं इसको अपने पास रख लेती हूँ। वो बच्ची उस टीचर के पास आ गई। माँ बाप सोच रहे हैं कि टीचर उसकी अच्छी ब्रेन सेटिंग कर रही है। उसने उसको पूरे गैंग से मिलवा दिया जिनका काम ही ये था, और उसके आगे जो हुआ वो मैं आपको बता नहीं सकती। और मुसलमान माँ बाप चाहे 1200 आंसू रोएं, 600 आंसू रोएं, या मगरमच्छ के रोएं, जो मर्ज़ी रोएं, लेकिन बच्चों को दीन नहीं दिया हमने। रो रो के जो उनका हाल होता है, एक बच्ची की इज्जत जो चली गई, तो फिर आपके ये डॉलर और क्रोन ये क्या देंगे आपको? ये उम्मत मुस्लिमा को सबक सिखाया जा रहा है। छोड़ो शिकवे, शिकायतें छोड़ो, लोग तुम्हें क्या कहते हैं, लोग तुम्हें बुरा कहते हैं, तुम काम करो, तुम इतने ऊपर उठ जाओ कि हर जगह तुम्हारे मुसलमान बच्चे ज़रूरत बन जाए माशरे की। तो बहरहाल कुरान को हिदायत बनाना है। 21 रुकू नंबर 111 से 119, हलाल और हराम का इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है। यौम ताती कुल्लु नफ्सिन तुजादिलु अन नफ्सिहा, जिस दिन हर शख्स अपनी ज़ात के लिए लड़ता झगड़ता हुआ आएगा। इस आयत से मेरे ज़िम्मे पता क्या आती हैं? पुतलियाँ, टिक टिक टिक। आज हम सब एक दूसरे के लिए लड़ सकते हैं, स्टैंड ले सकते हैं। माँ बच्चे के लिए स्टैंड लेती है, शौहर बीवी के लिए स्टैंड ले लेता है। क़यामत के दिन मी माई सेल्फ अना, मेरी ज़ात, हर एक सिर्फ अपना वकील होगा। यौम ताती कुल्लु नफ्सिन तुजादिलु अन नफ्सिहा, और हर शख्स को इसके किए हुए अमाल का पूरा बदला दिया जाएगा, और लोगों पर बिल्कुल जुल्म ना किया जाएगा। अल्लाह ताला इस बस्ती की मिसाल बयान फरमाता है जो पूरे अमन और इत्मीनान से थी। इसकी रोज़ी इसके पास बाफरागत हर जगह से चली आ रही थी। फिर इसने अल्लाह ताला की नेमतों का कुफर किया, तो अल्लाह ने इसे भूख और डर का मज़ा चखाया, जो बदला था इनके करतूतों का। इनके पास इन्हीं में से रसूल पहुंचा, फिर भी उन्होंने उसे जुटलाया, बस इन्हें अजाब ने आ दबोचा, और वो थे ही जालिम। जो कुछ हलाल और पाकीज़ा रोज़ी हमने आपको दे रखी है, इसे खाइए और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए। अब देखिए सूरत एंड पे जा रही है, दोबारा नेमतों पे बातें हैं। अगर तुम इसकी इबादत करते हो, यानी तो इसका शुक्र करो, तुम पर सिर्फ मुर्दार और खून और सूअर का गोश्त और जिस चीज़ पर अल्लाह के सिवा दूसरे का नाम पुकारा जाए वो हराम है। फिर अगर कोई बेबस कर दिया जाए, ना वो ख्वाहिशमंद हो और ना हद से गुजर जाने वाला, तो यकीनन अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। किसी चीज़ को अपनी ज़ुबान से झूठ मूठ ना कह दिया करो कि ये हलाल है और ये हराम है। ये तो ख़ास तौर पर आज उम्मत मुस्लिमा को समझाने की ज़रूरत है, बात बात पे हराम के फतवे। फरमाए कि अल्लाह पर झूठ बोहतान मत बांधा करो। समझ लो कि अल्लाह ताला पर बोहतानबाजी करने वाले कामयाबी से ही महरूम रहते हैं। इन्हें बहुत मामूली फ़ायदा मिलता है और इनके लिए ही दर्दनाक अज़ाब है। और यहूद पर जो कुछ हमने हराम किया था, इसे हम पहले ही आपको सुना चुके। हमने इन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते रहे। जो कोई जहालत से बुरे अमल करे, फिर तौबा करे और इस्लाह भी कर ले, तो फिर आपका रब बिला शक को शुबा बड़ी बख्शिश करने वाला और नहायत मेहरबान है। बड़ी खूबसूरत आयतें हैं। सीखने की बातें नोट कीजिए कि रसूल की तकजीब नहीं करनी, सरकशी नहीं करनी, अल्लाह की हदूद को नहीं तोड़ना, चीज़ों को खुद से हलाल और हराम नहीं करना, बोहतानबाजी को संगीन जुर्म समझना और तौबा और इस्लाह करनी है। और अब आखिरी आयात में दावत दीन के तीन अहम नुकात, इसी पे पूरा कोर्स है हमारा, दावा कोर्स, 10 दिन का कोर्स है गालिबन। आयत 120 से 128, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानिता, बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम पेशवा और अल्लाह ताला के फरमा बरदार और यक तरफा मुखलिस थे, वो मुशरिकों में से न थे, अल्लाह ताला की नेमतों के शुक्र गुजार थे। शाकिर अली अन उमे, अल्लाह ने इन्हें अपना बरगजीदा कर लिया था और इन्हें राह रास सुझा दी थी। हमने उन्हें दुनिया में भी बेहतरी दी थी और बेशक वो आखरत में भी नेक लोगों में होंगे। फिर हमने आपकी जानिब वही भेजी कि आप मिल्लत इब्राहिम हनीफ की पैरवी करें जो मुशरिकों में न थे। बेशक हफ्ते के दिन की अजमत तो सिर्फ इन लोगों के ज़िम्मे ही ज़रूरी की गई थी जिन्होंने इसमें इख्तलाफ किया था। बात यह कि आपका परवरदिगार खुद ही इनमें ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا. اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے. یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے پورا واقف ہے. اور اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہو, اور اگر صبر کر لو تو بے شک صابروں کے لیے یہی بہتر ہے. بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے, اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں, اور جو مکر و فریب یہ کرتے رہتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہوں. یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے. مسلسل کتنے پارے ہیں آپ شروع سے پہلے سے لے کے اب تک گنے, مستقل نہ بھی ہوئے نا, تو کتنے پاروں کے اینڈ پہ کس کا ذکر ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا. پہلے پارے سے لے کے آج تک گنیے گا. یہ ہیں وہ لوگ جو شکایتوں سے اوپر اٹھ کر, حالات کا رونا روئے بغیر, مجبوریوں کے پھندے گلوں میں پڑے ہیں, کیا کریں یہ کہے بغیر کام کر گئے. اگر آپ 120 سے 24 دیکھیں نا, تو ابراہیم ایک پیشوا تھے, اللہ کے متی بندے, توحید کے علم بردار, کبھی بھی شرک نہیں کیا, حالانکہ مشرک گھر میں تھے. آپ کے میرے پاس کیا حجت ہے؟ کیسے بچیں گے ہم؟ تو اپنے آپ کو اوپر اٹھائیے. ابراہیم جو کانت امتن تھے نا, اس کا مطلب پتا کیا ہے؟ وہ کام جو پوری امت مل کے نہ کر سکی وہ ایک شخص نے کر لیا. اور اللہ نے ایک ایسے بچے کو شرک سے بھرے ہوئے ماحول میں ڈال کر اس سے اتنا بڑا کام لے کر کیا ہمیں سکھایا کہ جس سے اللہ نے کام لینا ہوتا لیتا ہے. اب دیکھیں اللہ کے نبی کو یتیمی کی حالت میں پیدا کیا, جوان ہونے تک سارے ہی سہارے گھر کے قریب کے جو تھے وہ چھن گئے. کیا بتا دیا؟ لا الہ الا اللہ. اللہ جب کسی سے کام لینا چاہتا ہے نا, تو اس کو انسانوں کی ضرورت نہیں ہوتی. ماں باپ یہ تو مہرے ہیں, بھائی بہن یہ تو بس جھوٹے سہارے ہیں, شوہر ساتھ دیں گے تو کروں گی, بچے ساتھ دیں گے تو کروں گی, گھر کا ماحول اچھا ہوگا تو ہوگا. اللہ کہتے ہیں آپ آرام فرمائیے, آپ جیسے فریجل لوگ دین کا کام نہیں کر سکتے. یہ تو ان کا کام ہے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس کے اندر ڈال دیا کہ نفع ہے کہ نقصان. آپ ایپس اینڈ بٹس تولتے رہیے, پروز اینڈ کون کرتے رہیے, پلس مائنس کرتے رہیں, اللہ اپنا کام ان سے کرا لے گا جو ہر تنگی ترشی میں رہنے کے باوجود اپنی جگہ پہ موجود ہوں گے. اور آپ ایک بہانہ کیجئے, دوسرا بہانہ اس کے پیچھے موجود ہوتا ہے. ایک کام آپ چھوڑیے, دوسرا چھڑے گا. آپ امریکہ سے پاکستان کی فلائٹ لیتے ہیں, بیچ میں تین کنیکشن تھے بالفرض, ایک یورپ میں, ایک یو اے ای میں, اور ایک آپ کا ادھر کہیں قریب تھا. صرف ایک کنیکشن ڈراپ کرتے ہیں آپ, پوری ٹکٹ ضائع ہو جاتی ہے. کبھی کبھی نیکی کا ایک موقع جو ہمارے سامنے ہوتا ہے ہم اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں, پھر کروں گی, اگلے سال پوچھئے گا, پھر بتاؤں گی, پھر گیا, وہ نہیں آتا کام. آج بھی آپ دیکھیے کہ کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نو کہہ دیتے ہیں کئی چیزوں پہ, اللہ پھر کرا دیتے ہیں, پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. آج یہ نہیں کرنا, کل وہ نہیں, اچھا آج نہیں جاتی, عید کی تیاری کر لوں, اچھا وہ نہیں وہ نہیں, اللہ لا دیتا ہے اٹھا کے. تو اللہ کا لاکھ شکر کیجئے کہ آج تک آپ اور میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آج اپنا حال پوچھیں گے تو کتنی بیماریاں نکل آئیں گی اندر سے, نہ پوچھیے, مت جائیں ڈاکٹروں پہ. آج اپنی مجبوریوں کی لسٹ بنائیں گے تو آپ کو خود ہی اپنے اوپر ترس آئے گا. آپ نے عمار بن جاسر کی کہانی بھی پڑھ لی ہے. یہ مجبوریاں, یہ کہانیاں چھوڑ کر, شکوے شکایتوں سے اوپر اٹھ کر, ابراہیم شاکر الینومی, آیت 121, شکر گزار, قدر دان, اللہ کے مطلوب انسان کا سمبل ہیں ابراہیم. ماحول کے بگاڑ کا شکوہ کرنے کی بجائے تنہا ایمان پر قائم ہونے والے ہیں ابراہیم. اکیلے اللہ کے لیے کھڑے ہوئے تھے جبکہ ساتھ دینے والا کوئی بھی نہ تھا. پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کی پابندیوں میں دیے ہوئے شخص کا نام تھا ابراہیم. چاروں طرف اس وقت ماحول میں شرک تھا, توحید کے علم بردار تھے ابراہیم. اللہ سے ملی بھی ساری چیزوں کو اللہ کی چیز سمجھنے والے تھے ابراہیم. شاکر الینومی کا ایک جملہ بول دوں, میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے, یہ ہے شاکر الینومی. اور ان کا دل اللہ کے شکر کے جذبوں سے بھرا رہتا تھا. इब्राहिम के ईमान में इतनी हरारत थी कि अल्लाह ने उनके लिए हिदायत के रास्ते ऐसे खोले, पैगंबरी के लिए चुना और इंसानियत के लिए रहनुमा बना दिया और दुनिया का हसना दे दिया, आखरत की बेहतरी दे दी। हालांकि आप देखिए ना, तो इब्राहिम के पास दुनिया में कोई शोहरत थी, ना आवाम की भीड़ थी, ना इख्तदार था, ना दुनियावी रौनक थी। इनकी किसी कौम का भी जिक्र नहीं मिलता। ऐसे कि उन तनहा लोगों में से थे कि जब अपने हिस्से का काम करते गए करते गए, कल क़यामत के दिन उनका अजर देख कर लोग हैरान हो जाएंगे। तो अल्लाह की नज़रों में अवामी मकबूलियत, शोहरत, दौलत, घर, माल, ये कुछ नहीं है। खसूसियात इब्राहिम वाली आ गई तो अल्लाह आपको मुझे भी चुनेगा। और आखिरी आयत में ये जो दावत का अमल है ना, इस पे भी चंद जुमले सुन लीजिए, संजीदा अमल है। दावत ऐसे नहीं है कि आप धार साने जाकर शुरू हो गए, उठो नमाज पढ़ो, उठते नहीं, मुशरिक हो, मुनाफिक हो, ये है, सुस्त हो, कुसाला हो, ये है, वो है, गलत तरीका है। कुछ कोड वर्ड्स लिखा देती हूँ आपको। नंबर एक, संजीदा अमल है। नंबर दो, खैर ख्वाही के जज्बे के साथ उभरता है। तीसरी बात, अल्लाह के सामने जवाबदही के एहसास के साथ एक इंसान को मजबूर करता है कि वो अल्लाह के बंदों के सामने दाई बन जाए। वो दूसरों को इसलिए पुकारता है कि वो ये समझता है कि अगर मैंने ना किया ऐसा तो क़यामत के दिन पकड़ी जाऊंगी। और इसी साइकोलॉजी को लेकर चले ना, तो फिर दावत का जो अमल पीछे आता है वो इस आयत में, बिल हिकम व मौइज़तिल हसना और जिदाल। हिकमत क्या है कि शुरू में दिलों को अपील कीजिए, शुरू में लोगों को आप अट्रैक्ट करें। पहले आप तो अच्छे लगें, फिर आपकी बात अच्छी लगेगी। आप तो जहर लगते हैं तो लोग आपकी सोने जैसी चांदी और चीनी जैसी बात नहीं लेंगे। पहले अगले को स्टडी कीजिए। आप किताबें पढ़ते हैं ना, पहले उस बंदे को स्टडी करें। ये हिकमत है। जिससे बात करी उसका मिजाज गर्म है। आपके चार बच्चे हैं, एक का मिजाज गर्म, एक का ठंडा, एक का तर है, एक का पता नहीं कैसा है। आप पहले अपने चारों बच्चों को जाके स्टडी करें। ये गुस्सा सहता है, ये नरमी पसंद, इसको कुछ नहीं समझ, ये सिर्फ प्यार की मार लेता है। बस ये हिकमत। इसको ज़रा गुस्से से बात करूँ तो दबक जाता है, इससे ज़रा नरम बात करूँ तो ये सर पे जड़ जाता है। ये हिकमत है। फिर उसके बाद मौइज़ा हसना, ये दूसरी खूबी है, दर्दमंदी और खैर ख्वाही का अमेज़ा। दर्द हो अंदर, खैर ख्वाही हो अंदर, और ज़ुबान पे हो नरमी, सॉफ्ट, क्रिस्प। अल्लाह की अजमत का एहसास आपके अपने दिल में एक जलजला बर्पा कर चुका है। जब आप खुद कुरान पढ़ के अंदर से टूट चुकी हैं तो अल्लाह खुद ब खुद आपकी ज़ुबान और आवाज़ में बरकत डाल देगा। आप बोलेंगे, आपके बोलने से अल्लाह की अजमत लोगों के दिलों में आएगी। आप थोड़ा भी डराने की बात करेंगे, लोगों को जहन्नुम आंखों के सामने दिखेगी। आप जन्नत की थोड़ी सी भी बात करेंगे, लोगों की खुद जन्नत चारों तरफ दिखेगी। यानी फिर उसकी बात दिलों में उतरती है और फिर आपका कलाम ऐसा होगा जो दिलों को पिघलाएगा और आंखों को अश्कबार करेगा। ये दो हैं चीज़ें जिसको आप कहते हैं अल्लाह का कलाम देने के लिए नागुज़ीर, जिसको आप कहते हैं जिससे आप भाग नहीं सकते, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, जिसके बगैर आप ये काम ना करें प्लीज़, हिकमत और मौइज़ा हसना। अब आपने ये की, फिर भी कुछ ऐसे आगे चले। वो कहते हैं ना कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पे कलाम ए दिल पर बेअसर। कुछ लोग नहीं मानते, फ्यू परसेंट ऐसे होंगे जो ज़रूरी आप पे भी इतराज़ करेंगे, को गैर ज़रूरी बहस करेंगे। और मकसद क्या है कि उलझा दो, समझाना समझना नहीं मकसद होता, उलझाना मकसद होता है। फिर उनके लिए वजा दिल हम बिल्लत ही आसन, फिर ऐसे लोगों पे बात करेंगे तो इंशाल्लाह इस आयत पे अमल होगा। बाकी मुखालफत और ये चीज़ें तो होती रहती हैं ज़िंदगी में, तो क्या पता चला कि बड़े खूबसूरत पैगाम पे अल्लाह ने आपको मुझे रखा। अल्लाह की रज़ा के नुक्ते और भी नोट कीजिए। अल्लाह का मुखलिस बनना है, मिलत इब्राहिमी की पैरवी करनी है, लोगों को हिकमत के साथ दीन की तरफ बुलाना है, अच्छी नसीहत करनी है, बेहतरीन गुफ्तार से लोगों को दीन की दावत देनी है, और जुल्म का बदला लेने की बजाय सब्र से काम लेना है। पारे के और सूरत के एंड पे अपना मुहासबा भी कर लेते हैं, क्या मैं अल्लाह ताला की नेमतों पर या अल्लाह ताला की कुदरतों पे गौर व फिक्र करती हूँ, क्या मैं पूरे कुरान का इल्म लेने का शौक रखती हूँ? क्या मैं रिश्तेदारों के साथ अदल और सिला रहमी के साथ पेश आती हूँ? क्या मैंने शिकवे शिकायतों से ऊपर उठकर अपने हिस्से का काम करने की नीयत कर ली है? क्या मैं शहद की मक्खी से मकसदियत और मसरूफियत सीखती हूँ? क्या मैंने अपनी ज़िंदगी के इन चंद सालों को भरपूर तरीके से गुजारने की नीयत कर ली है? तो मुबारक हो आपको। इब्राहिम की तरह अल्लाह आपसे भी बहुत काम लेगा। शिकायत से ऊपर उठकर सोचना शुरू कर दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।